प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीव वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
तुम ना थे इस जीवन में, जीवन मेरा कैसा होता, निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया, जीवन मेरा ऐसा होता तुम ना आते। इसी संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया, इसी संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया, तुमको पाके सब कुछ पाया, तुम ना मिलते तो क्या होता तुम ना आते। कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में सूझी, कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में सूझी, तुमने आके ज्योति दिखाई, तुम ना आते तो क्या होता, निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया, जीवन मेरा ऐसा होता तुम ना आते।
हम आशा करते हैं कि आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से राजाओं की पहली पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके सातवें और आठवें अध्यायों का अध्ययन करेंगे। सातवें अध्याय का शीर्षक है राजा सुलेमान की भवन निर्माण योजना। पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने देखा कि राजा सुलेमान ने योजना के अनुसार यहोवा का भवन तैयार किया। उसके निर्माण में उसे 7 वर्ष का समय लगा। आज हम इससे अगले कार्यक्रम पर ध्यान करने जा रहे हैं। स्वाइए, इससे पूर्व कि हम कुछ आगे बढ़ें अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेमी पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको जीवन दिया और ये सुंदर क्षण दिए कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें और आपके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम आपके इस वचन को समझ सकें, आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकें और आपके वचन पर विश्वास कर सकें, ताकि हमारा छुटकारा हो, हम शुद्ध और पवित्र किए जाएं। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को प्रभु जी आप दूर करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आज हम राजाओं की पुस्तक के 7वें अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। 7वें अध्याय में हम सुलेमान के राजभवन के निर्माण के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले राजा के 7वें अध्याय में न केवल हम यह जानकारी पाते हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनवाया, परंतु हम ये भी सीखते हैं कि उसने अपने लिए एक राजभवन बनवाया। एक भवन उसने फ़िरौन की पुत्री के लिए भी बनवाया, जो उसकी एक रानी थी। इसके अतिरिक्त हम परमेश्वर के भवन के ओसारों, कांसे की 10 हौदियों तथा सोने के 10 दीवटों के विषय में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसलिए आइए मेरे साथ अपने पवित्र बाइबल से देखिए पहला राजा उसका 7वां अध्याय प्रथम पद। पहला राजा 7वां अध्याय प्रथम पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, और सुलेमान ने अपना भवन भी बनवाया और उसे पूर्ण करने में 13 वर्ष लगे। मित्र, सुलेमान को परमेश्वर का मंदिर बनाने में 7 वर्ष का समय लगा, परंतु अपना भवन बनवाने में उसने इससे लगभग दुगना समय ले लिया। और इसका तात्पर्य है कि सुलेमान का राजभवन बहुत विशाल और सुंदर भवन होगा, जो परमेश्वर के भवन से बड़ा होगा। सुलेमान के जीवन में हम स्पष्ट रूप में देखते हैं कि वह परमेश्वर और संसार दोनों से प्रेम करता था, जबकि उसका पिता दाऊद केवल परमेश्वर से प्रेम करता था। दूसरा पद हमको बताता है, और उस भवन को उसने लेबनान के वन की लकड़ी से बनाया। इसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें देवदार के खंभों की 4 पंक्तियां थीं, जिन पर देवदार की कड़ियां रखी हुई थीं। और 3 से 7 पदों में हम इस भवन की रचना के विषय में पढ़ते हैं। तब 8वें पद में लिखा है, और वह भवन जिसमें उसे रहना था, वह उस बड़े कक्ष के भीतर के एक आंगन में बना, वह भी उसी प्रकार का था। फिर उसी कक्ष के सामने सुलेमान ने फ़िरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक भवन बनवाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुलेमान ने न केवल परमेश्वर का भवन बनाया, बल्कि उसने अपना भवन और फ़िरौन की पुत्री के लिए भी एक भवन बनवाया। और ये वास्तव में एक भवन निर्माण कार्यक्रम था। तब 13 से अग्रिम पदों में हम हीराम तथा उसके कारीगरों के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, फिर राजा सुलेमान ने हीराम को सूर से बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की एक विधवा का बेटा था और उसका पिता सूरवासी एक ठठेरा था। वह कांसे की सब प्रकार की कारीगरी में अति बुद्धिमान, समझदार और निपुण था। अतः उसने राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम किया। मित्रवर, ये हीराम कारीगर है, ये सूर देश का हीराम नहीं है, ये राजा हीराम नहीं है, ये इसराइली व्यक्ति है। ये भी सूर देश का निवासी था। वह कांसे के काम में दक्ष था, उसने बड़े सुंदर ढंग से कार्य किया था और सुलेमान इसी प्रकार का कार्य चाहता था। तब आगे 15वें पद से आगे हम देखते हैं, यहाँ मंदिर से संबंधित और भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। तब 21वें पद में लिखा है, उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, और फिर बाईं ओर खंभा खड़ा करके उसका नाम बोअज रखा। प्रिय मित्र, यकीन का अर्थ है परमेश्वर स्थिर करेगा, और बोअज का अर्थ है इसमें सामर्थ्य है। भजन संहिता की पुस्तक के भजन 96 के 6 पद में भजनकार कहता है, उसके सामने ऐश्वर्य और प्रताप है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। सामर्थ्य, सामर्थ्य उद्धार के विषय बताता है, सामर्थ्य युद्ध की शक्ति के विषय में नहीं। जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य की चर्चा करते हैं तो वह हमें उद्धार की सामर्थ्य के विषय में बताता है। केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य को छुड़ाने की योग्यता रखता है, सामर्थ्य रखता है। शोभा, आराधना की शोभा के विषय में बताया गया है। यह सांसारिक शोभा की बात नहीं है, हमें परमेश्वर की आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर करनी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अनेक लोग हैं जो बाहर से स्वयं को अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाकर परमेश्वर की आराधना के लिए जाना चाहते हैं, परंतु स्मरण रखें, शोभा का अर्थ आराधना की शोभा है, और ये अपने भीतरी हृदय की शोभा और पवित्रता की ओर संकेत करता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। मित्र, परमेश्वर के भवन में ये दो खंभे मुख्य स्थान रखते थे, सामर्थ्य तथा शोभा। आत्मिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर की उपासना के लिए आता है, इन दोनों खंभों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप परमेश्वर की आराधना के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको परमेश्वर द्वारा पाप के छुटकारे की सामर्थ्य का अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है। तब आप जान सकते हैं कि परमेश्वर की क्या सामर्थ्य है। हमें पापों की क्षमा के अनुभव की नितांत आवश्यकता है। इसी के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानते हैं। हमारा उद्धार केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से ही संभव है। आराधना में जाने से पूर्व इस सामर्थ्य का अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपकी आराधना व्यर्थ है। पाप क्षमा प्राप्ति के पश्चात ही आप परमेश्वर की आराधना पवित्रता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की आराधना करने से पूर्व आपको पवित्र होने की आवश्यकता है, और इसलिए पापों की क्षमा नितांत आवश्यक है। आराधना का कोई एवजी नहीं है, अर्थात इसका स्थान आप किसी भी अन्य कार्य को नहीं दे सकते। दान, दक्षिणा, सेवा कर्म आराधना का स्थान नहीं ले सकते। आराधना तो आराधना ही है। हम पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। मित्रवर, हमारे पापों का रंग तो काला है और मसीह के रक्त का रंग लाल है, और इसका परिणाम हिम जैसी श्वेतता है, अर्थात बर्फ जैसी सफेदी। पाप के धब्बे केवल मसीह के पवित्र रक्त से शुद्ध किए जाते हैं, और ये परमेश्वर का महान प्रबंध है पापी मानव जाति के लिए। प्रिय मित्र, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उसकी उपस्थिति का आभास करें और अपनी योग्यताओं और दुर्बलताओं को स्वीकार करें, तभी हम उन्हें उनकी समस्त महिमा और शोभा में देख सकते हैं। अधिकांश लोग परमेश्वर की शोभा तथा महिमा का आभास नहीं कर पाते और अनायास ही परमेश्वर का विरोध व निंदा कर बैठते हैं। यशायाह नबी का अनुभव हमें स्मरण हो आता है, जो 6 अध्याय के 5 पद में बताया गया है। यशायाह कहते हैं, तब मैंने कहा, मुझ पर हाय, मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच रहता हूं, और मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। और इसी प्रकार पतरस का अनुभव हम लूकर यीशु समाचार के 5 अध्याय के 5-11 पदों में पढ़ सकते हैं। जब उसने प्रभु मसीह का सामना किया, उसने प्रभु मसीह का दर्शन किया, तो उसने ये स्वीकार किया, हे प्रभु, मैं पापी हूं, तू मेरे पास से चला जा। मित्रवर, याकीन तथा बोअज नामक खंभे सच्चे आराधकों के विषय में बोलते हैं। ये उनके प्रतीक हैं। ये पापों से मुक्ति पाई हुई वे आत्माएं हैं जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। ये छुटकारे के अनुभव प्राप्त किए हुए जीवन है। जी हाँ मित्र, और हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की आराधना सत्य पर आधारित है। इस सत्य पर कि परमेश्वर पवित्र, सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है। क्या आपकी आराधना में परमेश्वर को ऐसा ही स्थान दिया जाता है? यदि हाँ, तो आप ना तो अर्थहीन शोर मचाएंगे, ना आप आलस्य दिखाएंगे, ना आप नीरसता दिखाएंगे, वरन आप आराधना में गंभीरता तथा परमेश्वर के भय सहित आनंदमय स्थिति में उपस्थित होंगे। तब 23 से 26 पदों में हम पढ़ते हैं कि सुलेमान ने मंदिर में बड़े बड़े हौज भी बनवाए, और ये हौद ढली हुई धातु के हौज हैं। फिर 27 से 39 पदों में यहाँ 10 हौदियाँ बनाने का उद्देश्य ये था कि होम बलि के लिए लाए गए बलिदान की वस्तुओं को यहाँ साफ किया जा सके। मित्रवर, यह हमारे लिए एक संदेश है। मानव हृदय की शुद्धता के लिए और अधिक विशाल हौद तथा शोभा की आवश्यकता है। आज बहुत सी मंडलियां हैं जो बड़ी सुंदर और आकर्षक आराधना का प्रबंध करती हैं। ये सब हौद की ओर संकेत करती हैं, परंतु फिर भी वे लोग परमेश्वर के लोगों के हृदय को शुद्ध करने में असमर्थ व अयोग्य हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें पहुंचाने के योग्य नहीं हैं। वे आत्मा को नया नहीं बनाते, आनंद से परिपूर्ण नहीं करते, वे किसी प्रकार की शांति का अनुभव भी प्राप्त नहीं करते। स्मरण रहे, संसार के हौद हमें शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकते। आकर्षक आराधनाएं हमें शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकती। ये तो वो जल है जो हमें शुद्ध करता है, हौद नहीं। और ये जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। ये वचन रूपी जल मानव को शुद्ध करता है। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो चुके हो। यूहन्ना 15 उसका 3 पद हमें ऐसा ही बताता है, और ये प्रभु यीशु मसीह का कथन है। आज बड़ी बड़ी सुंदर आराधनाएं, सुंदर सुंदर आराधनालय आपको शुद्ध नहीं कर सकते। शुद्ध परमेश्वर का वचन करता है। परमेश्वर के वचन का स्थान लेना, उसे जीवन में कार्यान्वित रूप देना है। तब 40 से 47 पदों में हीराम कारीगर ने भवन के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण किया, और यह हमको बताया गया है कि उसने बड़े समर्पण के साथ इस कार्य को किया, और हमें उसके समर्पण की सराहना करनी होगी। तब 48 से 51 पदों में लिखा है, सुलेमान ने यहोवा के भवन की सभी वस्तुएं बनाई, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चौके सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे दाहिनी ओर 5 और बाईं ओर 5 रखी गईं, और सोने के फूल, दीवट और चिमटे और चौके सोने के कटोरे इत्यादि वस्तुएं, इनके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तब अंत में लिखा है, तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के अर्पण किए हुए सोने चांदी के पात्रों को भी भीतर लाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। मित्रवर, परमेश्वर के तंबू में जिसकी रूपरेखा व मानचित्र परमेश्वर ने अपने प्रिय भक्त मूसा को दिया था, उस तंबू में एक दीवट था जो मसीह यीशु का प्रतीक है। वह दीवट चौके सोने का निर्मित था, और इस मंदिर में वे बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। वहां पर एक था, यहां 10 हैं। यहां हम पुनः वृद्धि देख रहे हैं, और यहां हमारे लिए संदेश है। मित्रवर, हमें प्रभु परमेश्वर की वास्तविक महिमा को देखने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरा पर मानव रूप में थे, उनके साथ सबसे घनिष्ठ व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना था, उसने उन्हें डांटने का साहस भी किया था। वह उनके साथ इस सीमा तक بے تکلف بھی تھا۔ اوپرالی کوٹری میں وہ پربیش مسیح کے سینے سے سر ٹکائے بیٹھا تھا، اور ہم جانتے ہیں اس ویکتی کا نام یوحنا تھا۔ میرے متر، یوحنا مسیح یشو کے اتینت نکٹ تھا جبکہ وہ اس دھرا پر شریر روپ میں تھے، پرنتو یہی ویکتی پرکاشت واقعے کی پستک کے پرتھم ادھیائے کے ستر میں پد میں لکھتا ہے، جب اس کی درشٹی مہیمامئے مسیح پر پڑتی ہے تو وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے سامنے مرتک سا گر پڑا۔ میرے پریے بھائی بہن، دیوٹوں کی وردھی کرنے کی بھول نہ کیجیے۔ دیوٹ ایک ہی ہے، اس کی مہیما کو شاریرک منش سہن نہیں کر سکتا۔ مسیح کو سادھارن نہ سمجھیں، وہ مہا پرتاپی مہا مہیم پربھو ہیں۔ ہم ایسے پربھو کی اپستھتی میں جا رہے ہیں، ہم اس سے سیما سے ادھک گھنشتا کا دعویٰ نہ کریں۔ یہی وہ ہے جس کی ہمیں آرادھنا کرنی ہے، اسی پربھو کی استوتی کرنی ہے۔ کیول یہی پربھو ہے جس کے سمکش ہم منہ کے بل گرتے ہیں۔ یہ جیوت اور سچا پربھو ہے، اس نے مرتیو پر وجے پراپت کی ہے۔ یہی پربھو ہمارا و جگت کا ادھار کرتا ہے۔ یہ آج سے 2000 ورش پورو ایک گوشالا کی چرنی میں آیا، پرنتو اب وہ پنہ اپنی مہیما میں آئے گا۔ تب وہ نیایدھیش و راجا نراجا ہوگا۔ اور اس پرکار ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ ہم پربھو یشو مسیح کو ان کی واستوک مہیما میں پہچانے۔ ہمیں وردھی کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے۔ اور اس پرکار پرمیشور کے بھون کا کاریہ پورا ہوا، اور بھون نرمان سادھارن کاریہ نہیں تھا، اس کے لیے پورن سمرپن کی آوشیکتا تھی۔ تب آٹھویں ادھیائے میں ہم پرویش کرتے ہیں۔ آٹھویں ادھیائے کا مکھیہ وشے ہے مندر کا سمرپن، ارتھات واچا کی صندوق کو پرمیشور کے بھون میں یتھا استھان پہنچایا جانا۔ ادھیائے آٹھ میں ہم ان باتوں کو دیکھیں گے۔ پہلی بات، بھون تیار ہونے پر واچا کے صندوق کو اس میں رکھا جانا۔ دوسری بات، پرمیشور کا بھون شکائنا گلوری ارتھات پربھو کی مہیما سے بھر جاتا ہے۔ تیسری بات، راجہ سلیمان کا پروچن تتھا سمرپن کی پرارتھنا۔ 1 سے 11 پدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب واچا کا صندوق ملاپ والے تمبو سے لا کر پرم پوتر استھان میں رکھا گیا تو سمپورن مندر پربھو کی مہیما سے بھر گیا۔ متروار، ہم شاریرک روپ میں کیسے بھی سوستھ و سندر کیوں نہ ہوں، ہمارے بھیتری منشتو تب ہی پربھو کی مہیما اور تیز سے بڑھتا ہے جب ہمارے جیون میں پرمیشور کی اپستھتی ہوتی ہے۔ آج سے لگ بھگ 2000 ورش پورو پرمیشور نے یہ پربند کیا۔ متروار، آج وشواس دوارا آپ اپنے ہردے میں پرمیشور کو بلا سکتے ہیں۔ آج سرشٹی کرتا پرمیشور پربھو یشو مسیح کے روپ میں آپ کے شریر روپی بھون میں نواس کرتے ہیں۔ جو مسیح پر وشواس لا کر انہیں اپنا ویکتیگت ادھار کرتا گرہن کر لیتا ہے، وہ پرمیشور کا مندر گھوشت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پرمیشور کا پوتر آتما نواس کرتا ہے، جیسا کہ ہم پہلا کرنتیوں اس کے تیسرے ادھیائے کے 16 اور 17 پدوں میں پڑھتے ہیں۔ یدی ہم پربھو یشو کو گرہن کرتے ہیں تو پوتر شاستر بائبل بتاتا ہے کہ پرمیشور ہم کو اپنی سنتان ہونے کا ادھیکار دیتے ہیں اور اپنے پتر کی مہیما میں سہبھاگی کرتے ہیں۔ اسی پرکار جب پربھو کی واچا کا صندوق اس مانو نرمت مندر میں رکھا گیا تو وہ استھان مہیما اور تیج سے بھر گیا۔ 12 سے 21 پدوں میں ہم سلیمان راجا کے پروچن کو پڑھتے ہیں۔ یہ پروچن راجا داؤد پر کیندرت ہے۔ پرمیشور کا مندر کیوں اور کیسے بنا، سلیمان سمست پرجا کو یہ بتانا چاہتا ہے۔ واستو میں پرمیشور کے بھون کی ابھیلاشا داؤد کی تھی، اور یہ اسی کا سوپن تھا، جیسا کہ 2 سامول اس کے 7 ادھیائے میں بتایا گیا ہے۔ پرمیشور اس کاریہ کو داؤد کے دوارا نہیں کرانا چاہتے تھے، اور اس لیے سلیمان کیول داؤد کی یوجنا اور ابھیلاشا کو کاریانوت روپ پردان کرتا ہے۔ میرے وچار سے اسے سلیمان کا نہیں ورن داؤد کا مندر کہنا ادھک اچت ہوگا۔ 22 سے 26 پدوں میں سمرپن کی پرارتھنا کے وشے میں بتایا گیا ہے۔ 27 سے 30 پدوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ مندر ایک استھان ماتر تھا جہاں لوگوں کو آنا تھا اور پرمیشور کے سمکش سر جھکانا تھا، اس کے آگے بلیدان چڑھانا تھا۔ یہ پرمیشور تک پہنچنے کا استھان تھا۔ ये प्रतिमा पूजक संसार की धारणा है कि परमेश्वर पृथ्वी पर किसी भवन में निवास कर सकता है। राजा सुलेमान कहता है कि तू तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्थान में भी नहीं समाता। मित्रवर, परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, वह प्रत्येक स्थान पर हैं, वह सर्वश्रेष्ठ हैं, वह अपनी सृष्टि से ऊपर हैं, क्योंकि वह सृष्टा हैं अर्थात सृष्टिकर्ता हैं। अब जिस खंड की ओर हम जा रहे हैं वो अत्यंत रुचिकर है। यहाँ उस दिन की चर्चा की गई है जब इसराइल परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेगा और बंधुआई में भेज दिया जाएगा। 46-53 पदों में इस विषय में बताया गया है। सुलेमान कहता है कि निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं। मेरे मित्र, आप ऐसा ना कहें कि आपने पाप नहीं किया। परमेश्वर पिता कहते हैं कि आप पाप करते हैं और आप शत्रु के हाथ में सौंप दिए गए हैं। आप शैतान की बंधुआई अर्थात दासता में हैं। पवित्र बाइबल बताती है कि प्रवेश मसीह संसार में इसलिए आए कि बहुतों के छुटकारे के मूल्य को चुकाएं। यदि आप प्रवेश मसीह पर विश्वास करेंगे तो शत्रु अर्थात शैतान की दासता से आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। शैतान की गुलामी से स्वतंत्रता व दोष की भावना से मुक्ति ही मोक्ष अर्थात उद्धार कहलाता है। तब 47-53 पदों में बताया गया है कि मुक्ति का आधार पश्चाताप है। यदि आप पश्चाताप करेंगे तो आप उद्धार प्राप्त करेंगे। 54-61 पदों में सुलेमान के आशीष वचन के विषय में हम पढ़ते हैं और 62-66 पदों में समर्पण के बलिदानों के विषय में बताया गया है। और इस प्रकार से इन बलिदानों के साथ ही 8वां अध्याय समाप्त होता है। हमारा विश्वास है कि आप इस बाइबल अध्ययन के द्वारा लाभ उठा रहे हैं। यदि आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। अब प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी रक्षा और सहायता करे। आमीन।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। हमारा ईमेल एड्रेस है hindittv@radiovv.org, hindittv@radiovv.org। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।